ओम शांति। आज का इस सत्र के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जीवन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। व्यक्ति अपने जीवन में अगर आगे बढ़ता है तो उसका कारण है कि उसका कम्युनिकेशन अनेकों के साथ बहुत ही अच्छा है, और कैपेबिलिटीज या सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, गैप्स है उसके अंदर, तो सारी कैपेबिलिटीज होने के बाद भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। और कम्युनिकेशन कब से शुरू होता है? जब से हम शरीर में प्रवेश करते हैं तब से हमारा कम्युनिकेशन आरंभ होता है। एक बच्चा पैदा होते जब रोता है, ये उसका पहला कम्युनिकेशन है कि मैं इस संसार में आ गया हूं। और जीवन के अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने से पहले जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, चाहे वर्बली वो कम्युनिकेट करे या न करे, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस के द्वारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि मैं अभी संसार से जा रहा हूं। तो जिस प्रकार जीवन के अंदर थिंकिंग प्रोसेस, विचार शक्ति हमारी नित्य चलती रहती है, एक सेकंड भी उसके बिना नहीं चलता है, ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में कम्युनिकेशन के बिना नहीं चलता है। दूसरी बात, अगर ये देखें, प्राचीन काल से कम्युनिकेशन अलग अलग स्वरूप से हुए। महाभारत के अंदर दिखाते हैं कि जब संजय ने धृतराष्ट्र को सारा दृश्य देखते हुए सुनाता गया, कम्युनिकेट करता गया, मॉडर्न लाइफ में शायद हमारे सामने टेलीविजन है जिस पर हम हर चीज दूर बैठे हुए भी देख सकते हैं और दूसरों को कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह आदि शंकराचार्य जी की बात जब याद करते हैं कि उन्होंने अपने संकल्पों द्वारा बहुत कुछ कम्युनिकेट किया, यानी प्राचीन काल में मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्ति थी और उस आध्यात्मिक शक्ति से वो कम्युनिकेट करता था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम्स आते गए, वो आध्यात्मिक शक्ति लुप्त होती गई, और ये लुप्त होने के कारण जब विज्ञान ने उसका स्थान ले लिया, तो आज विज्ञान ने ऐसे ऐसे साधन हमें दिए हैं जिससे कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, ऐसे ऐसे सुविधाएं उपलब्ध कराई है कि दूर बैठे भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना आसान हो गया। जैसे इंटरनेट है, मोबाइल्स है, फोन्स है, उसके द्वारा कितना भी दूर क्यों नहीं बैठे हो, यानी ये कहे कि आज ये संसार बहुत छोटा हो गया है, और इतना छोटा हो गया क्योंकि दूर बैठे व्यक्ति के साथ बातचीत करना बहुत आसान है। ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, मोबाइल से हम किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इतनी दुनिया छोटी हो गई। लेकिन जितनी ही दुनिया छोटी हो गई, उतना ही मनुष्य भावनात्मक रीति से एक दूसरे से दूर होता चला गया। ट्रेन में हम मोबाइल से दूर विदेश तक बात कर सकते हैं, लेकिन अपने बाजू में कौन बैठा है उसके साथ बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है हमारे पास। वहां तक कि आज एक घर में मान लो कि फोन खराब हो गया और घर में एक दूसरे के साथ में मेंबर्स कम है, आज परिवार के अंदर पति पत्नी है, बातचीत करने में कुछ मूड आउट हो गया एक दूसरे के साथ, फोन भी खराब है और व्यक्ति के साथ में बातचीत करने में मूड आउट हो गया, तो पहले किसको ठीक करेंगे? मूड को ठीक करेंगे, आपसी संबंधों को ठीक करेंगे या फोन को ठीक करवाएंगे? किसको ठीक करवाएं? एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, लेकिन वो संबंध को ठीक करने के बजाय पहले हम सोचते हैं ये फोन भी टाइम पर ही चला गया, पहले फोन को ठीक करवाते, दूसरे से कम कम्युनिकेट करें हम। तो कहने का भावार्थ कि दुनिया जितनी छोटी होती गई उतना ही मनुष्य का अपने नजदीक वालों से, आसपास वालों से जो संबंध सुमधुर होना चाहिए वो नहीं रहा है। और उसका कारण क्या है? दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है। कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन हो जाता है कुछ और पता नहीं इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है कि बाद में उसको ठीक करना भी बहुत कठिन महसूस होता है। इसलिए दुनिया में कम्युनिकेशन जो है अलग अलग स्तर पर दो प्रकार के होते हैं। एक है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन। एक है जैसे कहा वर्बल और नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। दूसरा एक स्तर है जिसको हम कहे रियल कम्युनिकेशन, दिल से रियल कम्युनिकेशन, और दूसरा है सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन। अंदर में भावनाएं है नहीं लेकिन एक दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि समाज में हम रह रहे हैं, सोशल बीइंग है इसीलिए। तीसरा लेवल है हेड टू हेड कम्युनिकेशन, ये भी एक स्तर है। लॉजिकली वर्बली हम अपने आप को दूसरों के सामने इंटेलेक्चुअल सिद्ध करना चाहते हैं या हम बहुत कुछ जानते हैं और ये व्यक्ति नहीं जानता है, इसलिए ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें करने लगेंगे जिसमें भावनाएं नहीं होती है। और एक स्तर है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, और ये मिसिंग है आज के युग में। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, हेड टू हेड मिलेगा आपको, सुपरफिशियल आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन मिलेगा, वर्बल नॉन वर्बल भी मिलेगा, लेकिन जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए, कन्वर्सेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो आज दुनिया के अंदर नहीं दिखाई देता है। जब हम इस संसार में आए तो कम्युनिकेट करने के लिए कैसा कम्युनिकेट करना चाहिए उसके लिए भगवान ने हमें तीन गेट कीपर्स दिए हैं। सबसे पहला गेट कीपर, जब हम बोलने जाते हैं तो हमारा अंदर का आवाज। एक समय था जब हमें कहता था कि जो कुछ भी आप बोलने जा रहे हो, इज इट रेलेवेंट, इज इट रेलेवेंट, माना समय स्थान प्रसंग के हिसाब से है, अंदर से वो आवाज आती थी। लेकिन हमने क्या कहा उसको, इट इज रेलेवेंट, आप अभी नहीं आओ, बीच में है ना, एक बीच में, बीच बीच में अंदर का एक आवाज बीच में सुनाई देता है, अगर सुनने का अभ्यास हो तो। लेकिन जिसको सुनने का अभ्यास नहीं होता है वो सुन नहीं पाते हो उस बात को भी। तो पहला गेट कीपर वो दिल से बात बोलने के पहले ये कहता है, इज इट रेलेवेंट, समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, प्रसंग के हिसाब से वो है ठीक। आत्मा अपने लॉजिकल माइंड से कह देती है इट इज रेलेवेंट, हमें अभी बोलना है। अच्छा, तब दूसरा गेट कीपर फिर पूछता है, इज इट नेसेसरी, यही वक्त बोलना है, जरूरी, इसी वक्त आवश्यक है या बाद में भी कह सकते हो। तो हम क्या कहते हैं उस दूसरे गेट कीपर को भी, चुप करते हैं, नहीं अभी बोलना है, जो भी हो जाए देखा जाएगा, अभी बोलना है। तब वो तीसरा गेट कीपर हमें सावधान करता है कि ठीक है, अगर तुम बोलना चाहते ही हो तो थोड़ा शांति से, धीरे से, प्रेम से अपने हृदय की भावनाओं को जोड़ते हुए बोलो। लेकिन हम कैसे बोल देते हैं, जोश में, ऐसी सीधी लैंग्वेज में निकाल देते हैं। बाद में हमें याद आता है वो गेट कीपर ने हमें कुछ कहा था, और तब हम क्या सोचते, अगर थोड़ा मैंने शांति से बोला होता था ना तो ये मामला इतना बिगड़ता नहीं था। तब वो तीसरा गेट कीपर की बात याद आती है, या फिर हम सोचते हैं उस वक्त नहीं बोलते थे, बाद में बोलते थे ना तो शायद ये ठीक होता था, तब वो दूसरे गेट कीपर की बात याद आती है। और फिर बाद में हमें विचार आता है ये स्थान नहीं था, रेलेवेंस नहीं थी उसमें, अलग से उसको बुला करके बोलते थे ना, सबके बीच में बोला ना, वो मैंने जरा गलती कर दी, अलग से बुलाकर बोलते थे ना तो शायद ठीक होता था। तो तीनों गेट कीपर्स की बात हमें बाद में याद आ, वास्तव में उन्होंने दरवाजा ठोका था, कुछ कहना चाहा था हमें, लेकिन हमने कैसे कह दिया उसको, एकदम चुप करके उसका गला ही घोट देते हैं, और इसलिए धीरे धीरे वो आवाज बंद हो जाती है। वो हमें बाद में सावधान नहीं करती, आरंभ में हमें सावधान करती रहती है। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, फलाना व्यक्ति जो है ना, कोई भी बात उसको कहो ना, वो ठीक से कम्युनिकेट करता ही नहीं है, कोई बात हमें सुनाता भी है तो भी ठीक से सुनाता है, उसका कम्युनिकेशन आता ही नहीं है। लेकिन अगर हम ये सवाल पूछे कि आर वी गुड लिसनर्स, क्योंकि ये दो चीज होती है कम्युनिकेशन में, पहली है स्पीकिंग और दूसरी है लिसनिंग, ये दो जहां इकट्ठी होती है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। स्पीकिंग करने वाला कैसा स्पीकिंग कर रहा है उसके लिए तो हम कह देते हैं, लेकिन लिसनर्स हम कितने अच्छे हैं, या हमारा ध्यान इधर उधर होता है और बाद में हम वो बात छूट जाती है दिमाग से, और बाद में हम कहते हैं वो सही बोलता ही नहीं, उसको बोलना आता ही नहीं है, जब देखो गड़बड़ करता ही है, अगर उस वक्त वो ऐसा बोलता था वो कहेगा मैंने कहा था ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप उस समय ध्यान नहीं दिया। तो कई बार हम गुड लिसनर्स नहीं है? आप लोग तो शायद कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होगे ही, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपका क्षेत्र, आपका स्थान इतना जिम्मेवारी वाला है कि जहां डे टू डे आपको ऐसे नाजुक पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है और उनका सुनना पड़ता है, तो सुनने की कैपेसिटी भी आप में अच्छी होगी, ऐसा माने हम। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, कौन समझता है कि वी आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, जो ऐसा प्लीज कम फॉरवर्ड, आइए आप सामने, जो ऐसे समझते हैं आप आइए, आप आइए, जो समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकती हूं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो आइए। कौन अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं और हिम्मत भी हो यहाँ आने की। आइए अब हम आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देते हैं और आपको ये कुछ करने लिए कहेंगे, देखेंगे कि कितना अच्छी तरह से आपने उनकी बातों को समझा है। जिस तरह हम रेडियो पर कोई बात सुनते हैं तो उस समय हम ध्यान दे करके सुनते हैं, है ना, हमारी लिसनिंग पावर जो है उस वक्त एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि व्यक्ति बोलने वाला हमारे सामने नहीं होता है, इसलिए हम उसके एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और इसलिए उनके शब्द को ध्यान से सुन करके हमें प्रैक्टिकली वो चीज को या तो करना पड़ता है या अपनाना पड़ता है। तो आज प्रेम लता बहन जैसे कि रेडियो से बोल रहे हैं और इसलिए आपका मुख जो है इस तरफ होगा ताकि आपके फेस के एक्सप्रेशंस लोग नहीं देखेंगे, और आपको एक डायग्राम उनको बोलना है ड्रॉ करने के लिए अपने डायरी में, और ये कम्युनिकेट करना है। आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप जैसे एक रेडियो पर बोल रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं आपको पकड़ाती हूँ और ये डायग्राम आपको उनको इस तरह से कम्युनिकेट करना है जैसे रेडियो से आप बोल रहे हैं, और आपको इतना ध्यान से सुनना है और वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उस अनुसार अपनी डायरी में वो डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखिए आप कितना गुड लिसनर्स है, ओके। अच्छा बोलिए, ये डायग्राम आपको इस तरह से बोलना है जो ये लोग अच्छी तरह समझ पाए और कर पाए। बोलिए।
एक चौकोन है पर चारों दिशाएं उसकी बराबर नहीं है, उसके नीचे अपने जवान लोग पहनते वैसे एक टोपी है और नीचे एक पेंडेंट है।
और रेडियो रिपीट नहीं करता है आपको मालूम है,
हेलो हेलो,
लेकिन फिर भी आपको एक चांस दे देते हैं, आप बहुत धीरे बोलेंगे ताकि ये लोग समझ पाए। हाँ।
एक चौकोर है पर चारों कोने बराबर नहीं हैं। एक चौकोर है पर चारों कोने बराबर नहीं हैं, उसके नीचे अपने जवान अपने भारतीय जवान पहनते वैसी एक टोपी है, और घड़ी में जैसा लोलक रहता है पेंडेंट, वैसा लोलक उसके पीछे साइड में लगा है।
आपका पूरा हो गया? अच्छा, अब आपने किया डायग्राम बनाया उन्होंने जो कहा, नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, दूसरा कोई आ सकता है सामने जो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना जानता? आइए।
एक चतुर्भुज बनाइए, पहले एक चतुर्भुज बनाइए, उसके बाद ऊपर में एक ट्रायंगल खींचिए, साइड में भी राइट साइड में और एक ट्रायंगल ऊपर से नीचे तक लेकर, ट्रायंगल के ऊपर से रेक्टेंगल के नीचे तक लेकर, ट्रायंगल के बेस से राइट ट्रायंगल के बिंदु तक दूसरा लाइन खींचिए, परपेंडिकुलर लाइन, हुई क्या? उसके बाद रेक्टेंगल के सबसे नीचे वाले बेस से एक सेमी सर्किल खींचिए नीचे, उसमें एक रेडियस बनाइए नीचे में, सेमी सर्किल के नीचे में रेडियस, और फिर राइट सेमी सर्किल के लेफ्ट साइड में एक लाइन खींचिए छोटा सा, फिर उस नीचे एक गोला बनाइए सर्किल छोटा सा सबसे नीचे, फिनिश।
अच्छा, आप सभी ने डायग्राम बनाया? किसने बनाया, कौन बना पाए डायग्राम जो उन्होंने वर्णन किया वैसा डायग्राम कौन बना पाए, कोई बना पाए? आइए आप बताएंगे कि आपने क्या बनाया, आपने ऐसा वर्णन किया था, आप देखो ये ठीक था जो आपने बोला वैसा था? नहीं, आप बनाइए। बहुत अच्छी हिम्मत किया, फिर भी आपने अच्छी हिम्मत किया। ऐसा था बहन जी? नहीं। अच्छा अच्छा, दूसरा कोई अभी आए जो टीवी के ऊपर पढ़ रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस के साथ कम्युनिकेट करें यही डायग्राम को। आइए, माना पहले हमने सुना सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है। अब हम टीवी के ऊपर जैसे न्यूज देख रहे होते हैं और उस समय जैसे व्यक्ति अपने नॉन वर्बल लैंग्वेज को भी यूज करता है, अब देखो आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वो फेस पब्लिक को करना है और आपको नॉन वर्बल लैंग्वेज को भी यूज करना है।
ये आकाशवाणी है। अब आप हमारे एक प्रोग्राम सुनेंगे, उसमें हम आपको एक छोटी सी गेम देंगे और जो जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम मिलेगा। एक त्रिकोणाकार दोरिए, आराम से दोरिए, और उसके नीचे ट्रायंगुलर पहले दोरिए और बराबर उसके नीचे एक स्क्वायर दोरिए। उसके जो ऊपर के ट्रायंगुलर है उसके पास एक दूसरा ट्रायंगुलर बनाइए राइट साइड पर, और राइट साइड पर जो ट्रायंगुलर आपने खींचा है उसके नीचे एक और ट्रायंगुलर खींचिए।
आप पूछ नहीं सकते, आपको सिर्फ उसके एक्सप्रेशंस को देखना है और उनको सुनना है, पूछ
जो स्क्वायर आपने ड्रॉ किया है उसी के नीचे एक कैप सा आकार बनाइए, जैसे कि आर्मी लोग पहनते हैं ऐसी कैप का आकार बनाइए, और कैप के लेफ्ट साइड से नीचे एक घड़ी का लोलक लगा दीजिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया होगा और कौन करोड़ रुपया जीतता है और ये हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, किसने किया है? आप समझते आपने किया है, आइए दिखाइए। अच्छा, और आप बनाइए, आप बताइए जैसे आपने बताया वैसा था ये चित्र। अब आप देखिए, ये ठीक है, ये भी नहीं ठीक है, ये ड्राइंग था। लेकिन आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जो पहले आपने रेडियो पर जैसे सुना खाली वर्बल, उसकी उसमें आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी कितनी थी, और उसके बाद आपने जो एक्सप्रेशंस के साथ देखा उस समय आपकी एक्यूरेसी कितनी है। कहने का भावार्थ के कम्युनिकेट करने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता है। बॉडी लैंग्वेज भी इतना ही महत्वपूर्ण है, एक्सप्रेशंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और हमारा वर्बल उसके साथ मैचिंग होना ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कम्युनिकेशन के समय? हमारा पर्पस है कि हम व्यक्ति के एक दूसरे के निकट आए, हम अलग अलग टूल्स टेक्निक्स आदि यूज करके जिस तरह से भी एफिशिएंट हो सके टू कम क्लोजर टूगेदर एज ह्यूमन बीइंग्स। कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है? टू लर्न न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स विच कैन बी इमीडिएटली यूजफुल, टू अंडरस्टैंड इंटरैक्शन अमॉन्ग पीपल, टू वर्क ऑन द इनेट क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति के इसमें वैल्यूज भी क्वालिटीज भी आ जाती है कि कौन सी क्वालिटीज उसके जीवन के अंदर है, एंड टू इंस्पायर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जितना हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा उतना हमारा रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन हो सकता है। कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप दोनों का बहुत गहरा आपस में एक संबंध है। अगर हमारा कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं है तो हमारे जीवन में अनेकों के साथ में जो हमारा रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता रहेगा। खत्म हो जाएगा। इसलिए उस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन द्वारा हम इंस्पिरेशंस किसी को दे और अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाए, क्योंकि जितनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी उतना हमारे अपने जीवन में भी टेंशन्स बढ़ता जाएगा। कम्युनिकेशन ये शब्द एक्चुअली कहां से निकला है? ये शब्द जो निकला है ये एक लैटिन शब्द से निकला है जिसका भाव है, दो शब्द से बना है, कम प्लस यूनियन। कम यूनियन, कम्युनियन से कम्युनिकेशन निकला है शब्द, टू मेक नोन, ट्रांसमिट और पास न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। क्योंकि सारा दिन हम एक दूसरे के साथ में जब डील करते हैं तो काफी हमारे बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता रहता है, और जब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है तो उस वक्त उसमें कोई भी प्रकार की कमी त्रुटि न रहे, ये कम्युनिकेशन हमें सिखाता है कि हमें वास्तव में इस प्रकार से लोगों के साथ में डील करना है। या दूसरे शब्द में अगर कहे तो एक ऐसी सिनर्जी को मेंटेन करना है, ले आना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा हो उसके लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम एक दूसरे को कितना अच्छी तरह से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसके लिए हमारा मेंटल पोजीशनिंग कैसा है। उस वक्त अगर व्यक्ति गुस्से में है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो करके या बहुत बड़ी डिबेट डिस्कशन हो करके या करके आया है, तो उस वक्त उसकी मेंटल पोजीशनिंग कैसी है, और उसी वक्त हम कम्युनिकेट करने जाएं तो हमारा मैसेज कितना वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। दूसरा, हमारा उस वक्त का एटीट्यूड कैसा है, दोनों व्यक्ति का एटीट्यूड, दोनों व्यक्ति का मेंटल पोजीशनिंग और दोनों व्यक्ति की एक दूसरे के साथ में बोलने वाले की और सुनने वाले की स्थिति कैसी है, ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और अगर मेंटल एक दूसरे से ट्यूनिंग नहीं हो पाता है, अगर एक दूसरे के साथ में संबंध ठीक नहीं है, तो मेंटल वेवलेंथ हमारी ट्यून नहीं होती। जब मेंटल वेवलेंथ की ट्यूनिंग नहीं है तो छोटी छोटी बातों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग करना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए जब भी कम्युनिकेशन करना है आपको किसी के साथ या आपको किसी की बात सुननी है, तो उसमें ये छह बातें बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात है नो योर इंटेंशन। आप किसी से कुछ कहने जा रहे हैं, आपके मन में इंटेंशन क्या है, ये इंटेंशन को समझ लेना, उसको जानना, उसको समझते हुए उस मैसेज को क्लैरिफाई करो अपने अंदर पहले। जब तक हम मैसेज को अपने अंदर क्लैरिफाई नहीं कर पाते और ऐसे ही सीधा बोल देंगे तो हम गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या ये संभावना हो जाती है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है और वो रियलाइजेशन नहीं हो पाता है उस वक्त। तीसरी बात है कि वाइब्रेशन से ट्यून्ड हो जाओ। जिस वक्त आप कहने जा रहे हैं किसी को, उस समय के वाइब्रेशंस को भी भांप लो, महसूस कर लो कि ये सही वाइब्रेशंस है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति पॉजिटिव महसूस हो रही है, उस समय ये सुनने की कैपेसिटी में है या नहीं है, है ना। चौथी बात, चूज द करेक्ट मोड। अगर मान लो कि आप समझते हैं कि वर्बली बोलना ठीक रहेगा, यही करेक्ट मोड है कम्युनिकेट करना, तो वहां जाकर आप वर्बली उस बात को क्लैरिफाई करिए। आप अगर समझते हो कि नहीं, मेरे अंदर क्लैरिफाई करने की हिम्मत नहीं है, और इस वक्त अगर ये चीज बोलने के समय शायद मैं एक्साइटमेंट में आ जाऊं या मैं गुस्से में आ सकती हूं, बात ऐसी है, तो बेहतर यही रहेगा कि मैं लिख करके वो बात को स्पष्ट करूं, एक चिट पर लिख दूं बहुत पोलाइटली हम्बल वर्ड्स के साथ और उसको दे दूं। हो सकता है कि वो पढ़ने के बाद वो व्यक्ति का माइंड चेंज हो जाए। या अगर आप समझते हो कि नहीं, टेलीफोन पर उसको बताना ज्यादा बेहतर रहेगा, सामने जाने में या लिख करके देने में ठीक नहीं है, तो टेलीफोन पर सुनाना है, सन्मुख में सुनाना है, लिख करके देना है, किसी के थ्रू कहलवाना है, कौन सा करेक्ट मोड है, ये मोड को चूज करो। उसके बाद पिक अप द राइट टाइम। आप ऐसे समय में जा रहे हैं जिस समय व्यक्ति ऑपरेशन करके आया है, उस समय उतना टेंशन हो मान लो उसको, या ऑपरेशन करने के समय जाना है उसको, और उस वक्त उसका माइंड इतना टेंस्ड है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन हो या कोई भी कारण हो उसके अंदर में, आप समझते हो सुबह का टाइम बेस्ट रहेगा, आप समझते हो शाम का टाइम बेस्ट रहेगा, पिक अप द राइट टाइम, तब आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। और प्रायोरिटाइज योर कंटेंट, पहले मुझे कौन सी बात सुनानी है, बाद में मुझे कौन सी बात सुनानी है। अगर आपके पास 3-4 बातें हैं सुनाने के लिए, तो उसमें से सबसे पहले, मानो उस व्यक्ति को ज्यादा टाइम नहीं है, वो कहते हैं आप एक बात सुना दो बस, 10 बात मेरे सामने अभी नहीं करो, तो आप प्रायोरिटाइज करो कि मेरे लिए सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है। तो ये 6 बातें प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। अगर ये 6 बातें में कहीं कुछ मिसिंग है, तो आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, भले राइट टाइम हो, मोड करेक्ट नहीं है, वाइब्रेशंस आपने महसूस नहीं किए, या प्रायोरिटाइज नहीं किया आपने अपनी बात को, आपके अपने अंदर ही मैसेज क्लियर नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बात को कहने के लिए आप कितनी बातें साथ में जोड़ रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या समझेगा। तो इसलिए पहले अपने दिमाग में ही वो मैसेज को क्लियर करना जरूरी होता है। दूसरी बात कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया 2 बातें होती है कि एक व्यक्ति बोलने वाला होता है, एक व्यक्ति सुनने वाला होता है, उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन, एक व्यक्ति बोल रहा है, वो अपने मुख से ट्रांसमिशन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति रिसीव कर रहा, रिसेप्शन है उसका, तीसरा वो समझ रहा है, आपने जो कुछ कहा उसको वो समझता है, चौथा उसको स्वीकार करे या न करे, एक्सेप्टेंस लेवल उसका कितना है, और पांचवा उसके बाद उसका रिएक्शन या एक्शन क्या होगा। ये 5 बातें कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है। अब आप सोच लो, एक ही छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूं कि मान लो कि आप अपने ड्यूटी से 1 बजे फ्री हो रहे हैं और आपने अपने फ्रेंड को फोन किया और फ्रेंड को फोन करके कहा कि आप फलाने जगह पर, हाँ, रिसेप्शन काउंटर पर या फलानी जगह पर आ जाना, या फलाने बस स्टैंड पर आ जाना, हम आपसे वहां मिलेंगे। आपने अपने साथी को कहा या आपने अपने कलीग को कहा, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कहा कि आप फलाने बस स्टॉप पर पहुंच जाना, 1 बजे मैं अपनी ड्यूटी से वहां पर आ जाऊंगी। अब मान लो कि आप वहां पहुंच गए, लेकिन आपका कलीग, आपका फ्रेंड वहां नहीं पहुंचा 1 बजे, उस समय आपके माइंड में क्या चलता है, क्या चलता है? हाँ, हमेशा ही उसका ये आदत है, यही कहेंगे ना, हमेशा के लिए यही आदत है। फिर आपके मन में मानो 15 मिनट बीत गई, फिर भी वो नहीं पहुंचे, आधा घंटा बीत गया नहीं पहुंचे, आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? आने दो उसको, अभी ये सुनाऊंगी ये सुनाऊंगी, कितनी बातें मन के अंदर आ जाती है ना, ये बताना है। एक तो टाइम पर आते नहीं, मेरे पास टाइम इतना होता नहीं, और उसमें से मैं अपना टाइम निकालती हूँ, उसको टाइम की वैल्यू नहीं, कितना आप अपने मन के अंदर सोच रहे हैं। ओके, मान लो उसके बाद पौना घंटा हो गया तो भी वो व्यक्ति वहां पहुंच नहीं सका, क्या सोचेंगे आप? कहीं अटक गया होगा, भूल गया होगा, हाँ क्या बेवकूफ बना गया हमें, हाँ और क्या सोचेंगे? और उस समय आपको मन में गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, हाँ एक तो आपको भूख लगी है ना, आपने खाना नहीं खाया है, और धूप में आप खड़े हो बस स्टॉप पर, कहां इस वक्त इसको बुला लिया हमने, बराबर ये सब विचार चलते हैं। एक घंटा हो गया वो नहीं आया, और जैसे ही आपने सोचा अभी मैं निकल जाती हूं, एक घंटा मैंने वेट किया नहीं आया छोड़ दो, और आप निकलने की तैयारी में थे और वो व्यक्ति पहुंचता है, वो व्यक्ति नहीं पहुंचा, उसके लिए उसके माइंड में क्या चल रहा था, अभी मुझे जाकर ये बोलना होगा ये बोलना होगा, ये बहाना देना होगा, ये बताना होगा, है ना? आपके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। अब जब वो आया, आप अपना बोलना चालू करते हो, वो व्यक्ति उस वक्त आपकी बात सुनता है, वो अंदर प्लानिंग कर रहा है अभी इसका जवाब क्या दूंगा, तो आप बोल रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा है, क्योंकि उसका माइंड अंदर में प्लानिंग कर रहा है कि अब मुझे इसको क्या कहना है, क्या बहाना देना है, ये कहना पड़ेगा ये कहना पड़ेगा। अच्छा, तो रिसेप्शन कुछ हुआ नहीं, ट्रांसमिशन हुआ, रिसेप्शन कुछ हुआ नहीं, उसने कुछ समझा नहीं, समझने के न समझने कारण उसने कुछ भी बोल दिया आपको, तो आपका मैसेज लास्ट में कितना उस तक पहुंचता है, या कितना आप उसको कन्विंस कर पाते हो, या कितना उसको आप कह देते हो? आप जो उसको कहना चाहते थे, जिसके लिए आपने बुलाया था, वो 100% इंपॉर्टेंट काम के लिए आपने बुलाया था, वो चीज आपको कहनी थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं आया इसलिए वो चीज बाजू पर रह गई, और उसके बदले आपने जो कहा वो 50% उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद उसने जो सुना, कितना सुना उसने, अबाउट 40%। उसके बाद उसने जो समझा, कितना परसेंट, 30%। उसके बाद उसने जो अपने दिमाग में वो बात रखी, कितना परसेंटेज, 20%। उसके बाद जो आपको कहना था, जो आपकी इंपॉर्टेंट बात थी, वो उसके दिमाग में कितना परसेंट जाती है, क्योंकि प्री ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड हो गई, तो कितनी उसके अंदर जाती है वो इंपॉर्टेंट बात, खाली 10%। और उसके बाद आप जो कह रहे हैं उसमें से सार कितना निकलता है, जो इंपॉर्टेंट बात थी 100%, उसका सार कितना निकलता है, क्योंकि उसमें कितनी बातें और मिक्स हो गई, एक्साइटमेंट मिक्स हो गया, आपका गुस्सा मिक्स हो गया, आपकी और बातें मिक्स हो गई, तो कितना आपका उस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसकी वैल्यू कितनी रही, 0%। ये प्रैक्टिकल होता है, और वहां कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, कि जब सामने वाले ने लिया ही नहीं कुछ भी, सार को भी नहीं पकड़ा, क्योंकि उसका माइंड पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड था, तो इसलिए वो समझ नहीं पाए। कुछ वैल्यूज की इसलिए आवश्यकता है, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए मुख्य चीज जो है वो है वैल्यूज। वैल्यूज ये है मुख्य रूप से चार वैल्यूज। सबसे पहली वैल्यू अगर है प्रेम, लव। जब आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो उसमें कितना आप प्यार से बोल पा रहे हैं हर बात को। दूसरा, उसका रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, और वो रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए उस बात को कहना, तो दूसरी वैल्यू है रिस्पेक्ट। तीसरी वैल्यू है पेशेंस, धैर्यता बहुत चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ कहेंगे, सामने वाला कुछ कहेंगे, तो उसकी बात सुनने की भी एक धैर्यता की शक्ति चाहिए। और चौथा, मन की स्थिति शांति वाली चाहिए। और ये चार वैल्यूज अगर आ जाए कम्युनिकेशन में, यही जीवन जीने की वास्तविक कला है। ये चार बातों से ही कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ में भी कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। बाकी तो और बहुत सी बात है कम्युनिकेशन में, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक हमारा अपने आप से कम्युनिकेशन, दूसरा दूसरों लोगों के साथ कम्युनिकेशन, तीसरा कभी कभी भगवान के साथ भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन के अलग अलग स्तर होते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बात और कम्युनिकेशन के विषय में बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन में जितना बोलना, बोलने की कला, संवाद महत्वपूर्ण है, इस प्रकार सुनना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन में ही इन्वॉल्व होता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर पेशेंट जब उसके सामने आता है तो उसको वेलकम करता है, एक्सेप्ट करता है, तो लिसनिंग पावर के लिए सबसे पहला तो सामने वाला अगर कुछ कहने आया है तो उसको स्वीकार करना, माना मेंटल एक्सेप्टेंस, हमारी इतनी तैयारी हो मानसिक रूप से कि व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू से इज वैलिड। आज डॉक्टर के सामने पेशेंट आता है तो वो क्या कहता है, आइए बैठिए। अच्छा, सबसे पहला उसको एक्सेप्ट किया, दूसरा उसको क्वालिफाई करते हैं, अच्छा कहिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। माना उसने अपने आप को सुनने के लिए तैयार कर दिया, क्वालिफाइड कर दिया, पहले तो उसको स्वीकार करना, दूसरा अपने मानसिक रूप से क्वालिफाइड कर देना कि यस बोलिए आपका क्या प्रॉब्लम है, तीसरा वो जो कह रहा है उसको आप ठीक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं तो आप बीच बीच में रिफॉर्मुलेट करिए, अगर वो बोलने में कहीं कुछ शब्द मिस कर देता है तो डॉक्टर क्या कहता है, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये तकलीफ भी है साथ में, माना रिफॉर्मुलेट करता है। तो ऐसे सामने वाला व्यक्ति जो कुछ कहना चाह रहा है आप भी रिफॉर्मुलेट करिए, पूछिए उसको क्या यही भाव है आपका, यही कहना चाह रहे हैं आप। उसके बाद अलग से जो एसेंस डॉक्टर उसमें से, उसने जो 10 बातें बताई उसमें से फोकस करके, 4 पॉइंट मुख्य है उसकी जो बीमारी के, उसको फोकस कर लेता, आइसोलेट कर लेता और मेन पॉइंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करता है, जो साइड की जो एक्स्ट्रा बातें उसने बताई है उसको इग्नोर कर लेता है। इस प्रकार हम भी उसके सार को निकाल ले कि वो व्यक्ति वास्तविक रूप में क्या कहना चाह रहा है, उसका सार क्या है, उसके बाद उसको एसर्टन करिए वापस, अच्छा ये मुख्य बात है जो आपको तकलीफ में है, वो कहेगा हाँ। इस प्रकार से फिर बाद में उसको रिस्पॉन्ड दीजिए, उसको सॉल्यूशन दीजिए, आपने ठीक समझा है वो उसको बताइए और फिर कंक्लूजन करके आप उसकी बात का जवाब दो। तो जब लिसनिंग में भी इतनी बातें आती है, स्पीकिंग में जैसे कुछ बातें महत्वपूर्ण है, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल कम्युनिकेशन, इस प्रकार लिसनिंग में भी इतनी बातें बीच में आती है, इतने स्टेप्स अगर कहे, इतने स्टेप्स बीच में आते हैं, और जब इस प्रकार से हम सही विधि से सुनते हैं तब हमारा कम्युनिकेशन एक्यूरेट होता है, हम मिसअंडरस्टैंड दूसरों को भी कम करते हैं, दूसरे हमें भी मिसअंडरस्टैंड कम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं ये विषय को यहाँ समाप्त करती हूँ। वैसे तो इसमें काफी एक्सरसाइजेस है लेकिन वो एक्सरसाइजेस मैं आपको इस वक्त नहीं करा पाई। ओम शांति।